हाथ जोड़ लीजिए और मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर का ध्यान करें और मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है आज कार्तिक महीने की द्वादशी, कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, बाकी तीन दिन कार्तिक महीने के रहे हैं, त्रयोदशी चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा। 12 महीनों में कार्तिक का महीना भगवान को बहुत प्रिय है। इस महीने का दूसरा नाम दामोदर मास है और आज राकेश जी और विभा के घर पे सायंकाल को आप हरि कथा सुनने के लिए पधारे, आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमित संघ इस्कान गुड़गांव के भक्त वृंदों की तरफ से आपका स्वागत है। इस महीने की विशेषता ये है कि इस महीने में, ये महीना भगवान को बहुत प्रिय है और इस महीने में थोड़ा सा भी भगवान का भजन करने से, थोड़ा सा भी भगवान का कथा कीर्तन करने से बहुत ज्यादा लाभ और फल भगवत प्राप्ति के निकट पहुंचने का मिलता है। इस महीने का नाम दामोदर मास है। दामोदर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर है। यशोदा माँ जिस छोटे बालक को रस्सी से बांध रही है, दाम रस्सी को कहते हैं, रस्सी दाम का अर्थ होता है रस्सी और उधर का अर्थ होता है पेट, पेट के चौरों और रस्सी से बांधा जाना भगवान। भगवत गीता में भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, जन्म कर्म चमे देव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नएति माम एति स्व अर्जुन। अर्जुन भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो मेरे इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लेने को, और जो भी मैं यहां लीलाएं करता हूं उसको दिव्य मानता है, भगवान इस संसार में आते क्यों है, पहला ये प्रश्न है। और जब वो आते हैं तो कैसे आते हैं, और क्या करते हैं, और क्यों करते हैं, ये चार चीजें समझेंगे। तो भगवान कहते हैं, अगर तत्व से, तत्व से का मतलब उसकी गहराई में, उसके असली स्वरूप को, उसकी सच्चाई को कोई अगर समझ लेगा तो फिर संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा और जन्म मृत्यु से भी मुक्त होकर हमेशा भगवान के धाम में निवास करेगा। तो पहला ये प्रश्न है कि भगवान आते क्यों हैं? भगवद गीता में भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। धर्म क्या है जिसकी भगवान स्थापना करने के लिए आते हैं? भागवत में लिखा है, धर्मात साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान ने हमको दिया है। जैसे देश का कानून होता है, संविधान होता है, वो देश देता है। अगर संविधान ठीक नहीं होता है तो सरकार उसका ठीक तरह से चलाने के लिए व्यवस्था करती है। ऐसे भगवान का नेम जो है संसार चलने का, उसको धर्म बोलते हैं। उस धर्म में जब हानि होती है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि संसार में दो प्रकार के प्राणी हमेशा होते हैं, दिवाओ इमाओ सर्गे लोके अस्मि। दो प्रकार के प्राणी इस संसार में हैं, दो प्रकार की सृष्टि है, देव असुर एवच। एक देवता स्वभाव वाले हैं, एक असुरी स्वभाव वाले हैं। जब देवता स्वभाव वाले लोगों की कमी होती है, असुरी स्वभाव वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो धर्म की मर्यादाओं की क्षति पहुंचती है। तो उस वक्त धर्म के संतुलन को ठीक करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो अवतार लेने का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतर के आना। जो शब्द है अवतार, अवतार मतलब उतरना। जैसे मानो एक आदमी, आपका सगा कोई संबंधी है, भाई है, मित्र है, बंधु है, बांधव है, सखा है, कहीं बाहर देश में रहता है, और आपके घर में कोई शादी है अथवा कोई संकट की घड़ी आ गई है, आप उसको निमंत्रण दें, फोन करके बोलें कि आप आइए, बहुत आपकी आवश्यकता है, आपका इस वक्त आना बहुत जरूरी है, और वो वहां से तैयार होके और जहाज से नीचे उतर के यहां आए और आपके घर में आ जाए, तो इसको बोलना है वो उतर के आ गया, अभी अभी उतर के आया है। तो कहां था पहले? बोला वो अपने पहले तो अपने जहां रहता था वहां था, हमने बुलाया इसलिए यहां आ गया। तो ऐसे भगवान अपने निज धाम गोलोक में सदा निवास करते हैं। जब उनके भक्त संकट की घड़ी में उनको बुलाते हैं तब वो वहां से नीचे उतर के आके प्रकट होते हैं। तो इसलिए एक कारण बताया, जब अर्जुन को भगवान ने कहा है कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, तो अर्जुन क्या धर्म की स्थापना करने के लिए किसी को भेज दिया होता? कोई साधु संत महात्मा के द्वारा भी किया जा सकती है धर्म की स्थापना। तो भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अर्जुन का कोई और विशेष कारण भी है कि आपके आने का। तब भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं के वचन को पूरा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कर्ताम। और दुष्ट प्रकृति के जो लोग हैं समाज के अंदर, साधु पुरुषों को कष्ट देते हैं, उनका नाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कर्ताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को पुनः मैं स्थापन करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो भगवान कहते हैं साधु मुझे बुलाते हैं तब मैं आता हूं। तो एक भी साधु संसार में रह जाए और वो भगवान को बुलाए तो भगवान आते हैं। तो क्यों आते हैं भगवान? क्योंकि साधु प्रेम से उसको बुलाता है। सामान्य रूप से कहते हैं भगवान इसलिए आते हैं कि ये दुनिया है किसकी, जगत बनाया किसने, भगवान ने बनाया ना, उसका अपना है ना, उसी का जगत है। और हम सब कौन है, जितने भी प्राणी इस जगत में रह रहे हैं ये भगवान के, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान की संतान है। भगवान कहते हैं मैं आपका पिता हूं, पिता आम अस्य जगतो, मैं जगत का पिता हूं, माता, मैं जगत की माता हूं। तो माता और पिता जैसे अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं और करुणा के कारण आ जाते हैं उनके पास, ऐसे भगवान जब अपने बच्चों को संकट में देखते हैं तो उनकी रक्षा के लिए, उनको सदमार्ग के चलाने के लिए आ जाते हैं। और फिर भगवान देखते हैं इस दुनिया के अंदर क्यों भगवान को हम भूल के बैठ गए हैं, बंधन हमको किस चीज ने डाल दिया है, संसार में बंधन किस चीज ने हमको डाल दिया है, मोह का बंधन क्या है हमारा है? संसार में अपने बेटा है मेरा, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा सगा संबंधी है, यही तो बंधन है ना, इसी मोह के बंधन में सब फंसे हुए हैं ना संसार में। तो भगवान ने बोला देखो इसी बंधन में अगर सब फंस ही गए हैं तो मैं ही जाता हूं, मेरे से ये संबंध रख लो, मेरे को अपना बेटा बना लो, मेरे को अपना बाप बना लो, मेरे को अपना प्रेमी बना लो, मेरे को अपना मित्र बना लो। भगवान से ये संबंध रखने से हम छूट जाते हैं, दुनिया से ये संबंध रखते हैं तो बंध जाते हैं। तो भगवान वही संबंध जो हमारा इस दुनिया में बंधन का कारण है, वही हमसे संबंध स्थापित करने का अवसर देने के लिए आते हैं, ताकि हम उसी संबंध से भगवान से अपना रिश्ता जोड़ ले। तो ये भगवान के विशेष आने का उद्देश्य है कि हमको एक अवसर देते हैं कि हम उसको अपना मालिक मान ले, उनकी सेवा में लग जाए दास बनकर, हम उसको अपना मित्र मान ले, अपना सखा मान ले, अपना बाप बेटा मान ले, माता पिता की तरह उनकी उनको घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, छोटा लड्डू लाला है, इसको भी भोग लगाना है, इसको वस्त्र पहनाने हैं, तो उसको बालक की तरह माँ के भाव से, पिता के भाव से, बड़े घर के बड़े भाई के भाव से, जैसे जिस जैसे भी आप उनसे संबंध रखना चाहो, भगवान आपसे संबंध रखने के लिए आते हैं। उनका आने का उद्देश्य है कि जो आपके बंधन का कारण है वही सब बंधन भगवान के साथ रिश्ते रख दोगे तो छूट जाओगे। तो एक उनके आने का विशेष कारण यह है, इसलिए वो अवतार लेते हैं संसार के अंदर। हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं हमारे कर्मों के कारण, हमारे कर्म है तो उसका भुगतने के लिए हमको आना पड़ता है। लेकिन भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो वो अपनी इच्छा से आते हैं, हमारे कल्याण करने के लिए आते हैं, हमको रास्ता बताने के लिए आते हैं। संसार को शास्त्र में कभी यह कहा गया कि कारागार है जिसके अंदर बंदी सारे बंद है, जैसे जेल में बंदी होते हैं, कोई अपराध करते हैं तब अंदर आते हैं। हमसे कोई कर्म हुए इसके लिए, उनके फल भोगने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, अच्छा कर्म किया है अच्छा फल भोगने के लिए आए हैं, अच्छा हमारे को मान सम्मान है, घर परिवार है, अगर कहीं कोई हमसे गलत काम हुआ है तो दुखी बीमार रोगी होकर और संकट में इस दुनिया में जीने के लिए आए, लेकिन हमने कर्म किया है उसी को भोगने के लिए हम इस दुनिया में आए। और जैसे जेल के अंदर बंदी तो आता है अपना कोई अपराध करके, लेकिन जेल का जो मालिक होता है, जो राजा होता है, वो भी जेल खाने में आता है कभी उसको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कि यहाँ काम ठीक चल रहा है कि नहीं है, इनका उद्धार हो सकता है कि नहीं, ये सुधर सकते हैं कि नहीं, देखो इनके लिए कोई रास्ता बनाना चाहिए। तो वो जब जेल में आता है तो कोई अपराध करके नहीं आता है, वो तो जेल का निरीक्षण करने देखने के लिए आता है। ऐसे भगवान जब इस संसार में आते हैं तो राजा जैसे अपने जेल में जाता है, उसके ऊपर कोई जेल के अंदर पाबंदी नहीं है, उसके अंदर कोई बंधन नहीं है आने का, लेकिन वो आता इसलिए है कि जेल के लोगों के दुख सुख को देख ले और उनको सुधार के बाहर निकालने का कोई साधन जुटा ले। तो इस प्रकार भगवान इस संसार में आते हैं, और जब आते हैं तो वो थोड़े दिनों के लिए आते हैं, कुछ साल चंद साल रहते हैं, अपनी अपना जो कार्य करके चले जाते हैं, तो बाकी समय लोग भगवान को कैसे जानेंगे। अर्जुन ने जब कहा, अर्जुन ने पूछा कि ठीक है आप तो साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं तो थोड़े समय के बाद चले जाते हैं, तो फिर आपके आने का लाभ संसार को कैसे होता है। तब भगवान ने ये श्लोक कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मैं जब आता हूं तो मेरा आना भी इतना दिव्य होता है, इतना अलौकिक होता है कि उसका स्मरण करने से, और जब मैं कुछ आके जो भी कार्य यहां करता हूं वो कार्य मेरा सबके हित के लिए होता है, और उस कार्य में जो मेरी लीला होती है उस लीला का केवल चिंतन करने से, केवल स्मरण करने से, केवल उसके बारे में सुनने से, कथा के रूप में अनादिकाल से लाखों की संख्या में लोग मेरे पास आके पहुंचे हैं। इस श्लोक के बाद दूसरा श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रता बहवा पूता मदभाव आगता। बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं पवित्र होके, कैसे? मेरी इन लीलाओं को सुनकर। तो इस महीने में जो महीना अभी चल रहा है कार्तिक का महीना, इसमें भगवान ने बहुत विचित्र लीलाएं की हैं, लेकिन दो लीलाएं ऐसी हैं जो सुमरण में आने से, उनके बारे में जानने से भगवान के प्रति हमारा स्नेह और प्रेम बढ़ता है। एक लीला दिवाली के दिन भगवान ने की है और एक दूसरी लीला भगवान ने दिवाली के दूसरे दिन की है। दिवाली के दिन जब भगवान ने यह लीला की है तब श्री कृष्ण 3 साल और 2 महीने की आयु थी उनकी संसार की दृष्टि से, और जब दिवाली के दूसरे दिन की लीला की है तब उनकी आयु 7 साल के करीब थी। तो दोनों के लीला के समय में 4 साल का अंतर है, लेकिन दिवाली के दिन जो लीला की थी उस लीला का नाम है दामोदर लीला। जो इस महीने का नाम जो दामोदर पड़ा है उसका कारण है, इस महीने में भगवान ने दामोदर लीला की थी। तो इस महीने में हमने थोड़ी देर इसलिए कहा कि ये चित्र है भगवान दामोदर का, सभी जो भगवान के भक्त हैं अथवा भगवान के प्रति जिनका आस्था है वो घर में इस महीने में दिया जलाकर सायंकाल को भगवान को भगवान के सामने रख के दीप के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को दीप अर्पण करते हैं। ये केवल दीप एक महीना अर्पण करने से पुण्य इतना होता है कि उसका गणना नहीं की जा सकती है। अब बाकी 3 दिन कार्तिक के, 4 दिन है आज का दिन को लेकर, 4 दिन कार्तिक के बचे हैं। इन 4 दिनों में भी अगर नित्य नियम से आप घर में अपने भगवान के सामने दीप रख देंगे, दामोदर का ओम नामो दामोदर का नमस्कार करके, ये तो पूरा अष्टक हम पढ़ते हैं जिसको याद होता है वो, तो ये 4 दिन भी आपके लिए बहुत बड़े आध्यात्मिक लाभ के। संसार के तो सुख मिलते हैं उसकी कोई कीमत, वो तो ऐसे बेकार में ही मिल जाते हैं, उसके लिए कोई पूछने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन भगवान की तरफ हमारा जो प्रेम बढ़े उसकी प्रदान करने के लिए विशेष ये लीला भगवान की घटित हुई। इस लीला के विषय में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 9वां और 10वां अध्याय इस लीला का वर्णन करता है। और भगवान के इस रूप में जब ये ऐसे छोटे बालक के रूप में है 3 साल मां यशोदा उनको बांध रही है उखल के साथ, इस दृश्य को देखते हुए सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण में 1-8 श्लोक से इनकी स्तुति की है। उस स्तुति में पहला शब्द है नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूं। ईश्वर कौन? बोला जो सब सर्वशक्तिमान है, ईश्वर वो जो नयनता है, सब शक्तियों का अधिपति है, संसार को जो चलाता है, जगत एक नाथ, भगवान जो एक ही जगत का नाथ है उसको ईश्वर कहते हैं। और फिर ईश्वर का अर्थ है हमारे अपने निज प्रभु, वो प्रभु जिसके हम भक्त है वो ईश्वर। कैसा है यह ईश्वर? बोला सच्चिदानंद रूपम। वो प्रभु कैसा है? बोला वो सदा रहने वाला है। सत का मतलब सदा रहने वाला, उनका जन्म नहीं होता है, उनका मृत्यु नहीं होता है, वो आदि अनादि गोविंदा, आदि अनादि, जब कुछ नहीं था और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो गोविंद रहता है। ये सत का अर्थ है। चित का अर्थ है सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता है, सब को सब समय को जानता है वो कहां। और आनंद का मत अर्थ है वो आनंदमय है, वो आनंद का सागर है, आनंद का भंडार है, वो बना हुआ ही आनंद का है। भगवान किस चीज का बना हुआ है? बोला आनंद का बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर बना हुआ है ना, ये शरीर के ऊपर चमड़ी है, अंदर में फिर मांस है, मज्जा है, तो जो अंदर जैसे निकालते जाए तो अंदर से तो बहुत कचरा निकलता आएगा, तो बहुत कचरे का बना हुआ है ये, तो ऊपर से अच्छी एक थोड़ी सी ड्रेसिंग की हुई है चमड़ी की, ये उतर जाती है तो भूत भूत करके भाग जाते हैं। नहीं, वो कवि बोलता है पांच तत्व का पुतला कि ना नाम रखो या बंदा, बाहर सूरत सुंदर देखे अंदर माल भर दिया गंदा। हमारे शरीर में तो चारों ओर से गंदा माल भरा हुआ है, कान सुबह आंख से निकलो तो गंदे, कान से निकल देखो तो गंदे, नाक से गंदे, चारों ओर से तो गंद कहां से आता, अंदर है तब आता है ना, तो अंदर है ही तो गंद ना। बंदा तो बंदगी नहीं तो गंदे का गंदा, अगर भगवान की भक्ति नहीं करती है तो जैसा अंदर ऐसा गवार, गंदे का गंदा रह जाता। तो भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है, हाड चाम मांस का बना हुआ नहीं है, वो आनंद घन है। एक बार एक महात्मा था, दिवाली के दूसरे दिन गली से जा रहा था कोई भिक्षा लेने के लिए, तो अंदर में घर में बच्चे माँ को बोल रहे थे तो मेरे को हाथी दो मैं खाऊंगी, बोलता नहीं घोड़ा खाना है मेरे को, मेरे को घाड़ा, नहीं नहीं मैं शेर खाऊंगा। अरे भाई महाराज ने बोला ये बे बच्चे कौन से जो नाश्ते में हाथी घोड़ शेरा खाते हैं, शेर खाते हैं घोड़ा खाते हैं, कैसे बच्चे, देखो तो सही। घर में जाके दरवाजा खटखटाया, बोला माँ मुझे चाहिए तो कुछ नहीं लेकिन ये बताओ तुम्हारे बच्चे हाथी घोड़ा खाते हैं, ये कौन सा घोड़ा हाथी है दिखाओ तो सही। अरे बोला महाराज कल दिवाली थी, ये देखो मिठाई बनाई है, ये देखो हाथी जैसा है, ये लड्डू बनाया है, ये घोड़े जैसा दिख रहा है, ये सारा मिठाई का है, ये सारा मिठाई का बना हुआ है, ये हाथी घोड़ा कोई हांस मांड का मांस हाड का नहीं है, ये तो सभी मिठाई का बना हुआ है, पूरे का पूरा चीनी का बना हुआ है। देखे जो टॉफियां बच्चों की नहीं आती शक्ल की ऐसे, तो वो सारा ही चीनी का बना हुआ है, उसमें और तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान सारा बना हुआ ही आनंद का है, उसके अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है, वो आनंदमय है। इसलिए अगर आनंद चाहिए तो उसके पास जाओगे तो आनंद मिलेगा, वो आनंद का स्रोत है, उसके पास जाने से सच्चिद आनंद रूपम, उसका जो रूप है वो सच्चिद आनंद है। तो सत्यव्रत मुनि से पूछा भाई आपको ये भगवान जो आपका ईश्वर शक्तिमान दिख रहा है, ये आनंद स्वरूप है, ये सब कुछ जानता है, ये सदा रहने वाला है, काल का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता नहीं है, कहां आपको कहां दिख रहा है। तब कहते हैं गोकुले ब्राजमानम, इस वक्त वो इस धरती के ऊपर गोकुल के अंदर ब्राजमान है, ब्राजमान गोकुल में, गोकुल में प्रकाशमान हो रहा है, अवतार लिया है, इस वक्त गोकुल में है। बोला कहां गोकुल में क्या कर रहा है, तब क्या बोलते हैं उमुनि देखता है इस भगवान को ऐसे, कहता यशोदा भी उखुला यशोदा भी उलखालाद धाव मानम। अरे वो तो यशोदा के भय से उखल से कूदकर भाग रहा है। अरे कैसा आपका भगवान है, सच्चिदानंद भी कहते हो, सर्वशक्तिमान भी कहते हो, अब आज क्या कर रहा है गोकुल में। बोलो उखल के ऊपर खड़ा था और माँ यशोदा को पीछे से लाठी हाथ में लेकर आते देखा और उसके भय से उखल से कूद के भाग रहा है। क्या हुआ, भाग रहा है कैसे तुम्हें दिख रहा है। बोला लसत कुंडलम, उसके कुंडल है ना वो लटक रहे हैं और उसमें से चमक जो आ रही है वो मुझे दिख रही है कि वो दौड़ता हुआ जा रहा है, आगे भाग रहा है, कुंडल उसके हिल रहे हैं। बोले चमक कैसे रहे कुंडल। बोले वो इतना सुंदर है, उसके गाल इतने चमकीले हैं कि कुंडल उसको जैसे छूते हैं कुंडल चमकता है। हमारे तो आभूषण से हम सुंदर लगते हैं और भगवान को आभूषण पहनाते हैं तो आभूषण सुंदर हो जाता है, क्यों भगवान स्वयं सुंदर है तो आभूषण ही सुंदर हो जाता है भगवान को पहनाने से। बोला भाग रहा है तो क्या हुआ। बोला परामृष्टम अत्यंत दुर्तय गोपया, उस गोपी ने यशोदा ने पीछे से भागकर उसको पकड़ लिया, भागते हुए को पकड़ लिया। तो ये आपको तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्यों भाग रहा था, उखल के ऊपर क्यों खड़ा था। तो नवो अध्याय दसम स्कंद श्रीमद भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं एक दिन की बात है, दिवाली का दिन था, माँ यशोदा ने सब काम करने वाले दासियों को घर में दूसरे काम में लगा दिया था कि दूसरे दिन बहुत बड़ा उत्सव होना था, इंद्र की पूजा। और दूसरी बात यह थी कि माँ ने रोज रोज शिकायत गोपियों से सुनी थी कि रोज हमारे घर में माखन चुराने आ जाता है, तो माँ के मन में ये आया कि शायद ये माखन अच्छा नहीं बनाती है घर में काम करने वाली, तो मैं स्वयं आज बैठकर माखन मंथन करूंगी दही का और माखन स्वयं बनाने का प्रयास मैं खुद बनाती। अब मां ने माखन बनाने का मन में संकल्प किया, और ये संकल्प करके रात को स्वयं दूध को जमाया। दूध भी कौन सा, नंद बाबा तो गोप है, गोप का मतलब है नंद उसको कहते हैं जिसके पास 9 लाख से अधिक गाय हो, असंख्या में जिसके पास गाय हो, और गोप है और उसके पास गाय तो बहुत है लेकिन उसमें से विशेष 5-6 छांटी हुई गेर गाय है, गोरे रंग की गाय है, सींग उनके सो नीचे होते हैं, और उनका दूध विशेष रूप से गाय को पिलाते हैं जिसके दूध में पद्म गंधा गाय बोलते हैं, उसमें से पद्म का सुगंध आता है, बहुत सुगंधित दूध होता है। वो दूध मां ने रात को गर्म किया, ठंडा किया, उसमें जामुन डाला, जमा के रात को रख दिया मिट्टी के बड़े माटे में। अब कितना दूध मां ने जमाया था, ऐसे तो नहीं है कि दूध वाले से कोई किलो 2 किलो तो लेती नहीं थी, उनके घर में तो इतनी गाय थी कि 5-10 किलो दूध जमाए तो भी कम है। पुराने जमाने के लोगों को अपनी गाय होती थी तो दूध कोई खरीदना नहीं पड़ता, उसका हिसाब नहीं होता था, तब दही दूध खाने में कोई कमी नहीं, दूध की नदियां बहती थी इस देश में, कभी कहता दूध की नदियां बहती थी इस देश में। पूरा क्या हो गया, बोला दूध में पड़ गई पत्ती काली, ओम जय चाय की प्याली, ये चाय ने आकर दूध में, दूध की नदियां बहती थी उसके काली पत्ती उसमें पड़ गई तो उसका रंग ही बदल गया। ये तो इस भारतवर्ष के अंदर दूध कभी बिकता नहीं था, हर गृहस्थी के घर में कम से कम 2-3-4 गाय हुआ करती थी, गांव में पुराने लोगों से पूछो गाय हुआ करती थी, सबके पास की नहीं होती थी, और हर वो लड़की है ना बेटी जो है उसको संस्कृत में कहते हैं दोहेतर, दोहेतर, दोहेतर का मतलब दोहने वाली, जो गाय को दोहती थी, गाय दोहती थी इसके लिए उसका नाम दोहेतर हुआ करता था। और वो धी कहते हैं ना, क्या कहते हैं है? दिया, पंजाबी में दिया कहते हैं ना, दिया दोहने वाली, तो ये उसका अर्थ ये होता था, वो शब्द का अर्थ ही है। तो दूध बिकता नहीं था, मक्खन भी हमने अपने जीवन में देखा है, बच्चा पड़ोस के घर में छोटा बच्चा हो, जन्म हुआ हो, और उसकी गाय उस वक्त मानो के दूध नहीं देती है, तो जिस घर में दूध दवा मक्खन होता था उसके घर में दे के आता था कि बच्चे को मक्खन खिलाने के लिए दे कर आओ, पैसों का नहीं, मुफ्त के मक्खन दिया जाता था। और छाछ तो 25 आदमी गांव के आते थे घर दरवाजे के ऊपर छाछ लेने के लिए, वो थोड़ी सी छाछ दे दो, मुफ्त में मिलती थी, तो घरों में हमने 10-10 आदमी को छाछ ले जाते हुए देखा था। तो भारत के अंदर दूध को तो रत्न मानते थे, दूध पूत ये तो बिकने की चीजें नहीं है, अब तो बेटा भी बिकता है और दूध भी बिकता है, तो ये बिकने की चीजें नहीं थी, ये भारत की संस्कृति ऐसा महान संस्कृति थी। उनमें पहले लोग पूछते थे कि आपके घर में दूध पूत कैसे हैं, यही दो चीजें पूछते थे, दूध और पैसे थोड़ी पूछते, तुम्हारा बैंक बैलेंस कैसा है, और तुम्हारे ये बातें पूछने की नहीं होती थी। कुल की मर्यादाएं कैसी है कि सपूत पूत होना चाहिए, घर में दूध होना चाहिए, ये समृद्ध जो जो समृद्धिशील व्यक्ति है उसके पास। पहले जमाने में घरों के अंदर 12 महीने का राशन तो होता था, खाने का अन्न रखते थे ना, बड़े कोठियों में रखते थे ना 12 महीने का, चावल दाल गेहूं घी 12 महीने का होता था, कभी रोज जाके दुकान से लेने की जरूरत नहीं थी, ये सुपर मार्केट है, लकड़ी की हर चीज 12 महीने का राशन होता था। अब तो बड़े से बड़ा लखपति भी हमारी नजर में कंगाल है कि 15 दिन का जाके राशन लेके आता है, इतनी जगह ही नहीं है रखने की, रखेगा कहाँ, तो ये तो कंगालों का, ये तो अभी सब सजारों और आप कंगालों के बीच में रह रहे हैं, जिसके घर में 50-25 आदमी आए तो इतना सामान भी नहीं होता है खिलाने का, बड़े से बड़े सेठ करोड़पति के घर में भी नहीं होता है खिलाने का, है ही नहीं, तो जाएगा दुकान खुलेगा तब लाएगा ना, अब 24 घंटे दुकान खुले होते हैं क्योंकि घर में कुछ है नहीं इसलिए दुकान 24 घंटे खोले, नहीं तो खोलने की जरूरत क्या है। तो ये संस्कृति बिगड़ गई है सारी। तो बात ये कह रहे थे कि मां ने तो 8-10 किलो दूध जमा के रखा था, तो उसमें से कम मक्खन इतना निकलेगा, दिखाने के लिए मक्खन नहीं ऐसे चाहिए, अभी तो ऐसे करके ऐसे चपकाते हैं, ऐसे मक्खन चपकाए थे, ये मक्खन ऐसे खिलाया करते थे, मक्खन आपने कभी देखा नहीं होगा, आधा आधा किलो घी एक टाइम पे लोग खाया करते थे, रोटी के अंदर डाल के खाया करते थे। हमने तो वो भी देखा है कि अभी श्राद्ध के पक्ष गया ना, श्राद्ध होते हैं ना, उस जमाने में बरसात हो जाती है, हरा घास खा के आती है गाय, उसका घी बहुत पीले रंग का होता है, उस वक्त घी पीला होता है, और दूध, दूध की खीर बनती थी, और खीर थाली ये से जैसे प्लेट है वो थाली इस प्लेट से चार गुना लंबी होती थी, और उसकी किनारी कम चार इंच बड़ी होती थी, उसके अंदर खीर थाली भरते थे, उसके अंदर घी डालते थे कम से कम 200-300 ग्राम, फिर चीनी डालते, फिर हिलाते, और फिर वो कम से कम 2-3 किलो दूध वाली खीर और इतना घी वो खाते थे, और उसके बाद 50 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, और उनको थकावट नहीं होती थी। वो लोग जाते थे गांव में, हमने देखे थे उन लोगों को, खाते थे तो जाते भी थे। तो ये भारत की संस्कृति थी, और हर घर में हर माता सुबह 4:30 बजे उठती थी, और उठने के बाद पहला काम स्नान करने के बाद क्या करती थी, तैयार होकर भगवान का ध्यान किया, पहले पहले मटका अपना दही का ला के बाहर उसका मंथन शुरू करती थी। ये पहला काम होता, घर के अंदर से आवाज ही आया होगा, वो पूरा काम हुआ रख दिया, फिर चक्की चलाती थी, उस घर के उस दिन के खाने जितना आटा अपना ताजा पीसती थी, उसी दिन का उसी वक्त का आटा पीसती थी। तो माँ यशोदा ने सुबह 4:30 बजे उठा, उठने के बाद माँ ने स्नान किया, बहुत सुंदर पीली रेशमी साड़ी निकालकर पहनी, बालों के अंदर फूल लगाए मालती के, हाथों में कंगन पहने हुए थे, करधुनी यहां बांधी कमर में, घंटियां जिसमें बाजती है, बहुत सुंदर सुशोभित हुई सवेले उठकर, क्योंकि भगवान के लिए दही मंथन करने जा रही है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो कोई अपने आप को सुंदर आभूषण अथवा वस्त्र पहनने का भाव नहीं होता है, शादीवादी में जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सज धज के जाते हैं, लेकिन भगवान के पास सुंदर बन के जाना चाहिए, दुनिया के पास सुंदर बन के जाने का कोई अर्थ नहीं है, वो नाथ तो वो है, मालिक तो वो है, उधर जाना चाहिए। तो ये माता जी बहुत सुंदर पीली साड़ी पहन ली, दही का मटका लाई, मिट्टी का बहुत बड़ा आगे रखा, अंदर मंथनी डाली, और माँ ने पहला विचार मन में ये किया, अब जल्दी ये काम कर लूं, उठ जाएगा ये तो बच्चा, उठ जाएगा तो काम करने देगा नहीं, उसके उठने से पहले मक्खन तैयार होना चाहिए। और जब ये विचार कर रही है तो कविताएं बनी हुई थी कृष्ण की लीला की, अब 3 साल तक तो पूतना का उद्धार कर दिया था, शक्तासुर का उद्धार कर दिया था, तृणावर्त का उद्धार कर दिया था, तो किसी को याद करना होता है ना, कोई आपको हमेशा याद करना चाहिए, तो उसकी कविता बनाई जाती है, स्वयं नहीं बनाती है, किसी कवि से बनाती है, और सारा दिन गुनगुनाते रहते हैं। आपने देखा आजकल लोग भी कोई ना कोई गीत गुनगुनाते रहते, तो पुराने जमाने में भगवान के भजन ऐसे गुनगुनाते रहते थे। तो माँ मन से भगवान का चिंतन कर रही है, मुख से भगवान का गीत गा रही है, गोविंद जय जय गोपाल जय, और शरीर से मंथन कर रही है। और जब मंथन कर रही है माँ, तो 10-1 किलो का दही है उसमें, तो बड़ा जोर लग रहा है, मेहनत हो रही है, माँ का चेहरा बहुत लाल, मेहनत से चेहरा लाल हो रहा है माँ का, बहुत सुंदर लाली आ गई है माँ के चेहरे पे, तो हमने कहा परेशान थोड़ा परिश्रम करोगे तो लाली आ गई ना, तो उस वक्त में तो कोई लेने की जरूरत नहीं थी, बाजार से लाल रंग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, सुबह सुबह एक घंटा ये कर लिया तो सब कुछ अपने आप बड़ा सुंदर लगता था आदमी। हम बेंगलोर में प्राकृत चिकित्सा में हम गए, तो लेडीज का अलग है जेंट्स का अलग है चिकित्सा, तो वो हमारे प्रभु जी थे उसकी पत्नी भी साथ गई थी, तो हमने पूछा आपको माता जी इस तरफ क्या कहते हैं, बोला एक चक्की रखी हुई है, हमको बोलते हैं आधा घंटा चक्की पीसा, मैंने बोला ये घर में किया होता तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी, पैसे घर के देके और यही चक्की पीसने आई हो, 10-15 हजार रुपया दे रहे हैं उसको इलाज कराने का, और पीसनी चक्की है, ये तो घर में पीसनी होती है, आपने यहाँ आके चक्की क्यों पीसने के लिए। तो बोला ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरा शरीर इसमें हिलता है, पूरा शरीर अच्छी तरह से हिलता है, और ताजा पौष्टिक आटा निकलता है, जिसके अंदर ये मशीन का आटा तो इतनी मशीन तेज चलती है, सब जरूरी पौष्टिक पदार्थ तो उसमें जल जाते हैं, वो तो भूसा जैसा आ जाता है, और भूसा खाने के बाद सबका काम दिमाग भी बैल जैसा हो जाता है, किसी काम के रहते नहीं है। तो वो बड़ी ये बड़ी कला हुआ करती थी माताएं सुबह सुबह ये, और वो माता जो अभी अभी आटा स्वयं ने पीस के तैयार किया है, माखन अभी बनाया है जिसने, उसकी रोटी उसने बनाई है और उस रोटी के ऊपर वो माखन रखा है और फिर वो बेटे को दिया है, उठा के खाओ बेटा पढ़ने जाओ, तो बेटा माँ के चरण को स्पर्श करके जाता था। बेटा पूरे जीवन माता पिता की देखभाल और सेवा करता था, हाथ से मक्खन खिलाया हुआ होता था ना। अब तो बेचारे को नींद से जबरदस्ती पकड़ के उठाना है, चाय हाथ में कप देना है, दो बिस्कुट सर के ऊपर मारने हैं और घर से निकाल। तो वो बच्चा आपके पांव पड़ के नहीं जाता है पढ़ने आजकल। और ये दूसरी दुर्घटना हो रही है आजकल बड़ी, कि बच्चे 2 साल के नर्सरी में छोड़ के आओ, घर से निकालो, हमसे पाला नहीं जाता है। जब बच्चे और माता पिता के, माँ और बच्चे के बीच में प्रेम, एक दूसरे का स्नेह का समय होता है, तब बच्चे को हम स्कूल में डाल के आते हैं, टोकरी में डाल के। हमने इसका कल बैठ के इसके ऊपर हमारे मन में ये अनुभव होया हुआ कि जो बच्चा नर्सरी में माँ बाप छोड़ के आते हैं, उस माँ बाप को बूढ़ा आश्रम में बुढ़ापे में रहना पड़ेगा। ये सीधा आप समझ लो दोनों रास्ते, नर्सरी वाला बच्चा माँ बाप को बूढ़े आश्रम में छोड़ के आया, तुमने उसको प्यार से पाला नहीं, तुमको काहे के लिए बुढ़ापे में वो पालेगा। ये हमारा बिल्कुल निश्चित नरक निष्कर्ष है, ये बूढ़ा आश्रम बने ही तब है जब से बच्चों को घर से, अरे 5-6 साल तक तो गोद में खेलने थो बच्चे को, उठा के काहे के लिए घर से निकाल के क्यों आते हो। तो ये संस्कृति हमारी नहीं है, ये संस्कृति हमारी नहीं है। इस संस्कृति ने हमारा संस्कारों का सत्यानाश कर दिया। हरे कृष्ण। क्या टाइम हो गया? 6 बजे हैं, आधा घंटा और सत्संग करेंगे हम, 1 घंटा हमको लगेगा जाने में, रात का टाइम है ना। चलो वहां 9 बजे 9:30 पहुंचना है। आप लोगों को जल्दी जाना है, कथा इसको समाप्त करें। हरे कृष्ण। कहाँ चली गई विभा, कहाँ चली गई, कौन सी व्यवस्था में लग गई? हरे कृष्ण बोलो। क्या बात कर रहे थे? हरि बोल। आपका क्या नाम है बेटा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? निपुण। ओ निपुण है, निपुण का मतलब जो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, उसमें काम में बहुत बड़ा निपुण है। हाँ, ये गोपाल जी क्या हाल है निपुण जी? अच्छा, तो बिहारी जी तो सबके ऊपर कृपा करते। तो भाई गोपू सुनाओ, क्या समाचार है बेटा? दूध बेटा, दूध दूध कहाँ से आता है? हाँ, दूध कहाँ से आता है बेटा? हरे कृष्णा, कैसे हो?
ठीक हो।
ठीक हो। ये आपको देखो, ये छोटा सा लाला पसंद है आपको, ये कौन है? कौन है?
बड़े भैया।
बड़े भैया, ले जाओ इसको साथ, पकड़ो जाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कहाँ चले गए भाई? कौन से काम में? हरे कृष्णा। वो क्यों रोता है? रो क्यों रहा है? क्या हो गया? क्या कोई बात नहीं, तो कहाँ कहाँ है, कहाँ प्रसाद वाले आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे चलना चाहिए। हरे कृष्ण। आइए आइए, आगे आइए, बहुत जगह है। तो कहाँ हम बात कर रहे थे, कहाँ बात को खड़ा किया हमने? माँ यशोदा दही का मंथन कर रही है और मंथन करते करते माँ का चेहरा लाल हो गया है, थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा है। सुबह बहुत अच्छा व्यायाम है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन उसके साथ मक्खन भी तैयार हो रहा है। अब भगवान का ये कथन है कि जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूं, ये भगवान का अपना वचन है। यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं आ जाता हूं, मैं वहां ही होता हूं। तो सोए हुए छोटे लाला कृष्ण ने कहा, मेरी माँ तो मेरे गुण गा रही है, मुझे याद कर रही है, मैं सोया रहूं तो फिर मेरी बात झूठी हो जाएगी। वो उठे, पलंग के ऊपर उठे, पहले आंखें बंद पड़ी थी ऐसे, पास में हाथ लगाया कि माँ सोई हुई थी, कहाँ चली गई, माँ है नहीं। आंखें खोली, माँ नहीं, कहाँ गई माँ, नहीं तो माँ नहीं दिखी, माँ नहीं दिखी तो आवाज कान में पड़ा, क्या आवाज पड़ा, माँ की चूड़ियां है ना वैसे करिए छन 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 चुक 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 हो रहा है, और दही का जो चल रहा है ना अंदर मंथनी बम 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 हो रहा है। अरे कीर्तन कहाँ हो रहा है, भगवान ने कहे तो मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है कीर्तन, और माँ कह रही है गोपाल जय जय, हाँ समझ गए यहाँ हो रहा है कि हम बाहर आए तो घर पूछने की जरूरत नहीं, अंदर चेहरे कृष्ण का आवाज आ रहा था यही घर होगा, तो कीर्तन हो रहा है। तो बच्चा अब छोटा लाला पलंग से नीचे उतरा, छोटा है ना तो पलंग से उतरा, लटक के नीचे उतरा, चला और चल के माँ के पास आया जहां माँ मंथन कर रही है, माँ के पास आया, माँ भूख लगी है लेकिन माँ तो आंखें बंद करके और वो जोर जोर से गा रही है, आवाज सुन नहीं रही है, मैं बुला रहा हूं मेरे को, मेरी बात सुन नहीं रही है माँ, क्या करना चाहिए। ऐसे लाल ने कहा करना क्या चाहिए, मंथनी को पकड़ लेते हैं, तो जो मंथनी चल रही उसको ऐसे पकड़ लिया तो काम रुक गया तो माँ ने आंखें खोली और ये उठ के आ गया, माँ मुस्कुराई बहुत प्रेम से उसको देखकर, माँ भूख लगी, हाँ आजा बेटा, उठाया माँ ने गोद में, उस काम को रोक दिया, कपड़ा ढक दिया उससे उसके ऊपर, और बच्चे को उठाया माँ ने, माँ दूध पिलाने लगी बच्चे को, अब गोद में कृष्ण को लिया, 3 साल से बड़ा है कृष्ण, और माँ गोद में उसको सुला के दूध पिला रही है, और भागवत में लिखा है जब बच्चा दूध पिया है तो माँ उसको उसके चेहरे को देख रही है मुस्कुराता हुआ, बच्चे जैसे माँ के स्तन पान करेगा मुस्कुराने लगेगा, वो देखा अरे मेरा इष्ट वस्तु मुझे मिल गई, जिसके लिए मैं उठ के आया था वो जो मिल गई, अब देखा रोता हुआ बच्चा एकदम चुप होता है कि नहीं होता है, और चुप होने के बाद मुस्कुराने लगेगा, वो मुस्कुरा रहा है और माँ उसकी मुस्कुराहट को देखती है, उसके मुख को सब काम छोड़ के उसके मुख को ऐसे दे रही है, बच्चा माँ के मुख को देख रहा है, दोनों के बीच में एक दूसरे को प्रेम से देख रहे हैं। ये जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ और बच्चे के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है, ऐसा संबंध स्थापित होता है कि बच्चा 1000 स्त्रियों में अपनी माँ को पहचान लेता है, और माँ अपने बच्चे के रोने को, 1000 बच्चे रोते हैं अपने बच्चे के रोने को आवाज को पहचानती है, ये एक बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध माँ और बेटे का उस समय स्थापित होता है जब वो माँ का दूध पीता है, बहुत विशेष ये एक इसको कहा जाए मनोविज्ञान है माँ, इसलिए पुराने जमाने में कहा करते थे, माँ कहती थी बेटा मेरे दूध की लाज रखना, इसका मतलब इतना वो ये शब्द उसका उधार उतार नहीं सकता है बच्चा, ये यहां तक इसके इसकी परिभाषा यहां तक हुआ करती थी, तो माँ प्रेम से गोपाल को दूध पिला रही, बच्चा भी दूध पी रहा है, माँ देख रही है, अब माँ की दृष्टि अचानक बच्चे के मुख से हटी और ऐसे देखा तो चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ दूध उबलने लगा, दूध अंगेठी में रखा हुआ था, दूध उबला, माँ ने उबलते हुए दूध को देखा, बोला उबलते हुए दूध को उतारना चाहिए, तो उतारना चाहिए तो पहले बच्चे को उतारेगी तब उसको उतारेगी ना, तो 3 साल का बच्चा था, 7 तो नहीं ले जा सकती थी, बड़ा था, माँ ने कृष्ण को नीचे रखा और भागती हुई चूल्हे से लकड़ी निकाली, ऊपर से पानी थोड़ा छड़का, दूध नीचे बैठ गया, लेकिन ये बाल बोल मन में इनका विचार करता है, मेरी माँ को मुझसे दूध ज्यादा प्यारा है, ये गिर जाता, क्या फर्क है, मेरे बाप की गाय कम में गया कौन सा फर्क पड़ता है, मेरे को छोड़ दिया, मैं भूखा हूं, माँ उधर चली गई, क्रोध आ गया, मुझे भूखे को छोड़ दिया, क्रोध में क्या करता है, वहीं पत्थर रखा हुआ है शिला मसाला पीसने की, पत्थर को ऐसे उठाया, वही मटका जो माँ मंथन कर रही थी उसको दे मारा, ऐसे मटका फूट गया, मटके का दही बह गया, दही बह गया तो डर लगा, अरे मटका टूट गया, माँ आएगी डांटेगी, ये तो डर लगा तो वहां से भागा, लेकिन भागा तो बोला अभी तो मैं भूखा हूं, दूसरे कमरे में गया मक्खन ऊपर लटका हुआ था, उखल लिया, उसके ऊपर खड़ा हो गया और ऊपर से मक्खन को निकाला, खाया, निकाल, कल का है कौन खाएगा, खट्टा है ये तो, आजकल के है 15 महीने का 2 महीने का फ्रिज में रखा हुआ नमक डाला हुआ मक्खन खाते हैं, उनको तो ऐसा मक्खन थोड़ी खाता था, कल का है नहीं खाना है, बंदर, बंदरों को देते हैं, बंदरों को बुलाया, ऐसे फेंकने लगा, अब बंदर सब आ गए मक्खन खा रहे हैं, माँ दूध को नीचे रख के वापस आई, वापस आके देखा मटका फूटा हुआ है, माँ का हंसी आ गई, बोला ये बड़ा शरारती हो गया, क्रोध भी कर दिया, मटका भी फोड़ दिया, और माँ को मन में एकदम थोड़ा सा भय लगा, बच्चे ने मटका फोड़ा है तो डर गया होगा, डर गया होगा तो कहीं बाहर चला जाएगा, और कहीं अकेला वन में चला गया, जंगल में चला गया तो भूखा है, खाया कुछ नहीं है, कहाँ है इसको देखो, कहाँ देखें कैसे, तो नीचे देखते उसके पाँव के निशान पड़े, दही जो गिरा हुआ है उसके ऊपर पाँव के निशान है। माँ उस पाँव के निशान को देखते दूसरे कमरे में जाती है, बहुत बंदर दिख रहे हैं, अरे बंदर क्या कर रहे हैं सुबह सुबह इतना। माँ ने लाठी उठाई कि बंदर देखेगा तो आदमी लाठी उठाएगा। आपने तो कभी वृंदावन जाते हैं ना, बंदर हैं चारों ओर से, और बंदर इतने होशियार हैं वृंदावन के, बड़े बिजनेसमैन है बंदर, लोगों की पता है पार्टनरशिप वृंदावन में, लोगों ने बंदरों के साथ बिजनेस साझेदारी का किया हुआ है। बंदर ऊपर बैठा होगा, आप जाओगे वो आपका चश्मा आंखों से ऐसे उतारेगा आपको पता नहीं लगेगा, और खड़ा हुआ लोग कहते हैं 10 मिनट निकालो जल्दी करो, क्यों बोला मैं केला लाता हूँ, केला लाएगा बंदर को ऐसे केला देगा, बंदर केले को ऐसे कैच करेगा, चश्मा नीचे गिरा उसको देगा, ये बिजनेस है। बहुत से लड़के खड़े होते हैं बंदर बिजनेस है, बंदर की भागीदारी का साझेदारी बिजनेस, और इतने होशियार है बंदर, ये आंखों से कार में बैठा हुआ हमारे साथ आगे सीट में कार में बैठा है, कार में बैठे हुआ चश्मा लेके ऊपर चला गया, वो बिस्कुट दिया चश्मा नीचे आ गया, बिस्कुट 2 रुपये का पैकेट था छोटा वाला, पार्ले खाया बंदर ने और चश्मा नीचे आ गया। तो इसलिए जो रहते हैं वृंदावन में वो लाठी साथ रखते हैं अपनी, तो लाठी देख के बंदर नजदीक नहीं आएगा, वो डरता है लाठी से। तो माँ ने लाठी उठा दी, अब माँ के हाथ में लाठी देखी तो बंदर एकदम भागे, लाठी जो देखी बंदर भागे तो ऐसे कृष्ण देखने लगे बंदर भाग क्यों गए। माँ ने कहा मरकट का मित्र, ये बंदरों का दोस्त। माँ को आते हुए देखा, उखल से कूदा और भागा, और ये बात हमने की थी इसमें, यशोदा भियूल उखलाद धाव मानम, यशोदा के भय से उखल से कूद के भागा, क्यों भागा, क्योंकि मटका फोड़ के आया था, मटका जो फोड़ दिया था तो इसलिए भय से भागा, और भागा तो माँ ने क्या किया, प्रामृष्टम अत्यंत दुर्त्य, पीछे से माँ भागी। अब माँ भागी, हमारे तो घर 2 रूम के फ्लैट हैं, बच्चा भागेगा तो कहाँ जाएगा, इधर से पकड़ लिया जाएगा, लेकिन बाबा का घर तो 2-4 एकड़ में नहीं था, 15-20 एकड़ में लंबा चौड़ा मैं किलोमीटर में था, इतनी गाय जो होती थी। अब बच्चा आंगन में गांव घूम रहा है, बड़े पेड़ उनके बीच में, कभी इधर जाए कभी है, और माँ उसके पीछे, अब माँ तो थोड़ी भारी भरकम है, बच्चा छोटा वैसे करके जाए तो बच्चा हाथ, और गोपियां चारों ओर देख रही है हो क्या गया है नंद रानी को, ये भाग क्यों रही है सुबह सुबह बच्चे के पीछे, उनको मजा आ रहा है वो देख रही है, ये बेटा आगे भाग रहा है माँ पीछे भाग रही। तो भागवत में लिखा है कि माँ भारी भरकम शरीर था तो आस्ते आस्ते चलने लगी, थक गई, लेकिन थके हुए भी बच्चे को कैसे पीछे से पकड़ लिया, बच्चे को पीछे से पकड़ लिया तो हुआ क्या, तो वो दूसरे श्लोक में बोलता है, रुदंतम मोहनेत्र युगमेन मृजंतम, दोनों आंखों को मलने लगा और रोने लगा। क्यों रोने लगा, दोनों आंखों को मलने किस चीज, कपड़ा पकड़ लिया, माँ की साड़ी, बोलो नहीं नहीं, कराम भोज युगमेन, दोनों कमल, हाँ कर कमल हाथ को लेकर ऐसे ऐसे इसको मलने लगा, रोने लगा। बोलो क्यों रोने लगा, बोला माँ के हाथ में लाठी देखी ना, माँ ने बोला तुमने भांडा फोड़ा, हाँ फोड़ा है, चोरी की है, अभी नहीं करूंगा, अरे अभी नहीं करूंगा, तो देखता किसको है, लाठी को देखता है, कैसी आंखें लग रही है उसकी इस वक्त, सातंक नेत्रम, बड़ी भयभीत आंखें, देखिएगा इस चित्र के अंदर आंखें देखिए, बहुत निकट से इसमें आप आंखें देखिए, उस वक्त आंखें कैसी है, आंखें दिखेंगी नहीं, बहुत ना छोटा है यहां उसकी आंखें, इसमें देखिए कोई निकट से जाके, भयभीत है, मां की ओर देखता है बहुत डरा हुआ है, जिससे काल, जिसके भय से काल भयभीत होता है, डर कांपता रहता है, आज वो उस गोपी के डांटने से कांप रहा है, कैसे कांप रहा है, मुश्वास कंप त्रिरेख अंक कंठ, ऐसे कर रहा ना, तो ये जो गला है ना श्वास लेने से ऊपर नीचे हो रहा है, और ये नस कैसी है उसकी, त्रिरेखा अंक, 3 बहुत सुंदर सुंदर, इतनी इतनी सिलेंड्रिकल, बहुत सुंदर उसकी नस है, और स्थित ग्रीव, और उस नस के अंदर बहुत सी मालाएं माँ ने पहनाई है, मालाएं पहनी हुई है, तो माला ऊंची नीचे हो रही है, ऐसे कर रही है, तो रो रहा है, आंखों को मल रहा है, और भागवत में लिखा है वो काजल जो माँ ने डाला था वो काजल सारा मुंह के ऊपर फैला हुआ है, एक पहले सांवला फिर ऊपर से काजल नीचे उतरा, आंखें लाल लाल अरुण लोचन है वो, और सुबह सुबह उसका वो चेहरा है और माँ से डर रहा है। माँ ने देखा ये बच्चा डर रहा है, लाठी फेंक दी माँ ने, लाठी से डर रहा है लाठी फेंक दी, माँ को तो दंडित तो करना नहीं था, ताड़ना करनी थी बच्चे की, तो माँ ने लाठी फेंक दी। अब माँ ने लाठी फेंक दी तो फिर क्या किया, बोला दामोदर भक्ति बधाम। माँ ने अपनी प्रेम भक्ति से कृष्ण को बांध दिया। तो रो क्यों रहा था, डर क्यों रहा था, डरने जैसा तो है नहीं, भगवान है, आपने बोला सच्चित आनंद है, आपने बोला नमामि ईश्वर, हमें ईश्वर है, डर क्यों रहा था। बोला स्वदृक इति दृक स्वलीला भी आनंद कुंडे, अपने गोकुल के निज भक्तों को आनंद देने के लिए आज वो छोटे बालक का अभिनय कर रहा था। इति लीला, इति दृक स्वलीला, ये स्वयं एक लीला कर रहा था। क्यों कर रहा था, बोला इसलिए कर रहा था लीला के दो एक हफ्ते पहले यशोदा माँ को शिकायत की थी आके ग्वालों ने, बालों ने, छोटू ने, कि मिट्टी खा रहा है तेरा लाला जमुना के किनारे पे। माँ तो डंडा उठाया कि बीमार हो जाएगा, मिट्टी कैसे खाता है, बच्चे देखे ना मिट्टी खाते हैं, माँ तो बड़ा माँ सारा दिन चौकसी करती है, मिट्टी तो नहीं खा रहा, देखो मिट्टी खाता है तो मुंह खोल के मुंह खोल निकालो करती है ना, अभी भी माने वाला मिट्टी खोल मुंह खोलो, हाँ भगवान ने मुंह खोल मिट्टी खाइए, मुंह बंद पड़ा है मिट्टी मुंह में पड़ी है, बोले नहीं 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 खाई ऐसे बोल रहा है, बोला नहीं मुंह खोलो, तो मुंह खोला, मुंह खोला तो मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा, माँ ने देखा पूरी दुनिया है और दुनिया क्या यशोदा बैठी है अंदर, कृष्ण उसके पास खड़ा हुआ था, माँ ने आंखें मिली ये क्या इसको तो भूत लग गया हुआ क्या है, तो माँ डर गई। और एक हफ्ता पहले दूध पिलाते हुए माँ बच्चे ने ऐसे जमाई ली, मुंह खोला तो उसके अंदर फिर एक बार वो पूरा ब्रह्मांड देखा, तो कृष्ण ने कहा ऐसे तो नहीं है माँ मुझे को भगवान मान ले और मुझे भगवान समझ के फिर कमरे में कहीं बिठा दे, बंद कर दे दरवाजा, ऐसा तो नहीं है, इसलिए ऐसा कोई लीला करना चाहिए जिससे माँ को मालूम हो कि मैं उसका छोटा बच्चा हूं, मैं उससे डरता हूं, तो ये लीला इसे विशेष ये लीला करने लगा। क्या इति दृक स्वलीला भी आनंद कुंडे सघोषम, अपने अपने गोकुल गांव के उन भक्तों के लिए लीला कर रहा था। बोलो कैसे भक्त है, तदीयेश ग्नेशु भक्तित जितत्व, ये ऐसे भक्त हैं जो जानते हैं, उनको ये ज्ञान है। बोला क्या ज्ञान है, कि दामोदर भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है, भगवान अजीत है कोई उसको जीत नहीं सकता है, लेकिन जब भक्त और भगवान के बीच में कॉम्पिटिशन होती है, स्पर्धा होती है, और जब स्पर्धा परिकाष्ठा पे पहुंचती है उस वक्त भगवान अपने भक्त को जीताता है और स्वयं हार जाता है। भक्ति जितत्व, भक्ति के द्वारा जीता जाता है भगवान, ये भगवान की एक विशेषता है। आज मैं पढ़ रहा था श्रीधर कोलावाच, एक बहुत बड़ा महाप्रभु का भक्त हुआ है, वो प्रार्थना करते हुए कह रहा है भीष्म देव के सामने युद्ध के अंदर भगवान अपना वचन तोड़ के हार गए और भीष्म के वचन को सत्य कर दिया, ये भक्ति जितत्व, भक्ति के द्वारा जीते। और यशोदा माँ और कृष्ण के बीच में कॉम्पिटिशन हो गई। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यशोदा ने कहा कि अभी आज तुमने तोड़ा है ना भांडा, चोरी किया ना, बंदर को खिला रहा था ना, तुमको आज अपने साथियों के साथ खेलने जाने नहीं दूंगी, तेरे को यह बांध के रखती हूं। अंदर में क्या भाव है, ये बाहर का भाव है। अंदर में भाव क्या है, भूखा है, डर के मारे भाग गया वन में तो खिलाएगा, अभी तो नाश्ता भी नहीं किया, आधा दूध पीता छोड़ा, थोड़ी देर बांध के रखती हूँ, मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर आके इसको खिलाऊंगी, फिर जाके घूमे, अब इसको बांधना, थोड़ा डर भी लगेगा तो शैतानी भी नहीं करेगा। माँ ने बोला तेरे को बांधूंगी। भगवान ने मन में संकल्प किया नहीं बांधना है, भगवान का संकल्प केवल कर, संकल्प करने से यह पूरी सृष्टि होती है, भगवान को केवल संकल्प करना है सृष्टि हो तो सृष्टि हो जाती है, भगवान के सोचने से सृष्टि होती है, और भगवान तो दूर की बात है, ब्रह्मा ने अपने मन से पुत्र पैदा किए, ये सात ऋषि मन से पैदा हुए, चार कुमार ब्रह्मा के मन से पैदा हुए, तो पहले संकल्प सृष्टि हुआ करती थी, फिर मानसिक सृष्टि हुआ करती थी, मन से सोचने से सृष्टि हो जाती थी। वो पार्वती माता ने ऐसे करके ऐसे मेल का ऐसे करके गणेश बाबा पैदा हो गया, जिससे सृष्टि ऐसे हुआ करती थी। جب لوگوں کا من بھی بہت کمزور ہو گیا تو پھر میتھون سسٹری استری پروش سے سسٹری ہونے بعد میں سسٹری ہونے لگی. پہلے سسٹری تو ایسے ہوا کرتی تھی. تو بھگوان تو سنکلپ ماتر سے بھگوان میرے کو نہیں بندنا, بھگوان نے من میں سنکلپ کیا تو بھگوان کی وبھوتیاں بھگوان کے شریر میں ایسے پرویش کی. ماتا اوکھل کو تو رسی باندھ دی, رسی کو ایسے کر کے یہاں گانٹ لگائے تو چھوٹی ہو گئی رسی. اے دوسری رسی لاؤ, داسی رسی لائی اس کو جوڑا پھر ایسے کر کے اے پھر چھوٹی ہو گئی, پھر تیسری لاؤ تیسری. یشودا دیکھتی ہے صبح صبح اس کی کمر میں کالا دھاگا باندھا تھا اتنا چھوٹا سا, یہ مٹھی جتنی اس کی کمر ہے, آج ایک رسی کے اوپر 10 فٹ اور رسی ہے, رسی دو یہ موٹا ہو یہ نہیں ہو رہا ہے, چھوٹی رسی نہیں ہو رہی, ہو کیا رہا ہے. وہ گوپیاں کھڑی ہیں وہ بولتی ہیں ارے یشودا اس کے بھاگ میں بندھن نہیں لکھا ہے, چھوڑ دو اس کو. اب یشودا کہتی ہے میں اس کو باندھ کے چھوڑوں گی بھلے شام ہو جائے, سارے شہر کی رسیاں لا کے اس کو باندھوں گی, نہیں چھوڑوں گی. ابھی تک تو بھگوان ایسے نہیں باندھوں گا من میں خیال تھا, لیکن ماں کی اور دیکھا کہ میں نہیں چھوڑوں گی, شام تک بل لگ جائے سب رسیاں منگاؤں گی باندھوں گی. بھگوان نے ماں کے مکھ کو دیکھا, مکھ میں تو پسینہ, کالے گھنے اصلی بال ماتا جی یشودا کے بہت سندر, کالے کالے بال اصلی. اصلی کے اوپر کیوں ہنس رہے ماتا جی؟ اصلی کے اوپر ہنس رہے, آج کل اصلی بہت کم ہے. کالے بادل سے جیسے برسا گرتی ہے ایسے پسینہ گر رہا تھا. ماں تھک گئی, جوڑا کھل گیا, چوٹی سے پھول نیچے گر رہے ہیں. بھگوان کے ہردے میں کرونا ہو گئی, ارے میری ماں تھک گئی ہے اور درد سنکلپ باندھنے کا کر دیا ہے. بھگوان کا ہردے بہت انگرہت ہو گیا, بہت اس کے ہردے میں کرونا آ گئی, بولا اب تو ٹھیک ہے ماں سے ہار ہی لیتے ہیں, ماں کو جیتنے دو. بھگوان کے ہردے میں کرونا کیسے اتپن ہوا, باقی ساری بھگوان کی شکتیاں اپنے آپ لپت ہو گئی اور ماں نے ایسے کر کے رسی بند گئی. تو بھگوان کب بندھن میں آتے ہیں پریم کے؟ جب بھکت پورا پریشرم کرتا ہے اور درد سنکلپ کرتا ہے کہ بھگوان مجھے بھگوان کو پانا ہے, اور بھگوان جب اس کے سنکلپ کی دردتا کو اور اس کے پریشرم کی پریکاشتا کو دیکھتے ہیں تب بھگوان کے ہردے میں کرونا ادے ہوتی ہے, تب بھگوان بھکت کے ہردے میں بندھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اورد ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. تو ماں نے باندھ دیا, داموہر بھکتی بدھو, بھکتی کے دوارا بندھا گیا. اب ستیہورت منی نے دیکھا کہ بندھا ہوا ہے سگوشم اپنے کو بندھ آنند دینے کے لیے جو جانتے ہیں, آج اس کو تو ہزار بار نمسکار ہے, پریم سے بن جاتا ہے. پھر دو شلوک میں پرارتھنا کرتے ہیں, پرارتھنا کیا کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے بھگوان کو کہتے ہیں ورم دیو موکشم نہ موکش بدھیوا, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا, آپ ور دیتے, سب کو وردان دیتے ہیں نا, جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں نا, تو سب سے زیادہ لوگ سنسار میں آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ بولا مکتی مانگتے ہیں. بھگوان بولا چاہیے مکتی کا؟ بولا نو موکش نا, مجھے مکتی نہیں چاہیے. لوگ سنسار میں کہتے ہیں بھگوان ہم کو مکت کر دو, وہ کہتا مجھے مکتی نہیں چاہیے. ارے بھائی تمہیں مکتی نہیں چاہیے تو ویکنٹھ میں آپ کو بلا لوں, آ جاؤ ویکنٹھ میں. نہ موکش ودھیوا, موکش سے اوپر مجھے ویکنٹھ بھی نہیں چاہیے, اور بھی کوئی ور نہیں چاہیے. ارے بھائی پھر کیا چاہیے, کیا مانگتے ہو؟ اتی ناتھ وپو گوپال بالم, اے بھگوان یہ آپ کا جو گول جو بال گوپال روپ ہے سدا من سے سدا میرے من میں بس آ رہا ہے, بس یہ میرے کو آپ کو ور دینا ہے, مکتی نہیں چاہیے, ویکنٹھ نہیں چاہیے, اور کوئی بھی وردان نہیں چاہیے, دھن کے سکھ سمپتی کی تو بات ہی کیا ہے. یہ بال گوپال کا آپ کا جو روپ ہے نا, جو یہ ماں کے سامنے آپ کھڑے ہو پریم سے بندھے ہوئے, یہ میرے من میں بس جائے, بس یہی کافی ہے. بھگوان دیکھے تو آپ کو اس روپ میں کیا اچھا لگ رہا ہے بھائی؟ تو بھگوان کہتے ہیں منی پرارتھنا کہتا ہے ادم مکھم بوجا, یہ آپ کا مکھ جو ہے نا یہ کمل جیسا بہت سندر ہے, یہ سندر مکھ کے جانو, اور کنتل ہی یہ تو آپ کے گھنگرالے بال سنگدئی رکھتا, یہ چمکتے ہوئے کالے بال گھنگرالے اس مکھ کے چاروں اور الکاولی ایسے جھٹک رہی ہے کہ جیسے بھاورے کمل کے پھول کے اوپر منڈلا رہے ہو, یہ بہت سندر لگ رہا ہے. بولا اس میں سندر کیا ہے؟ بولا منہ چمبیتم بم رکتا دھرم, وہ ماں یشودا آپ کو جو گال چومتی ہے نا उन उसके बीच में जो लाल लाल आपके होंठ हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे आपका ये रूप बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे और कोई लाख वरदान देना चाहो वो नहीं चाहिए, मुझे ये आपका बाल गोपाल का रूप मेरे हृदय में बस जाए, बस ये मेरी एक प्रार्थना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आंखें बंद कर दो, तुम्हें को ये दिखेगा। तब तो मन में और लालच हो गई, नहीं नहीं आंखें बंद करके नहीं, खुली आंखों से देखने में आना चाहिए, मैं खुली आंखों से देखने चाहता हूं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, महाराज आप तो, आपको नमस्कार है, आप तो अनंत है, आप विष्णु है ना, सब जगह है ना, आप दामोदर है ना, प्रसिद्ध प्रभु मेरे को प्रसाद दो, मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करो, मुझे ही प्रसाद दे दो, अभी क्यों तुमको प्रसाद दो, दुख जाला आप दो, मैं तो दुख के समुद्र में डूब रहा हूं, कृपा दृष्टि वृष्टि, अरे कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर करो, दीनम बतन, मैं बहुत दीन हूं, आप दीन बंधु है ना, आप दीन दयाल है, मैं बहुत दीन, ग्रहणेश अनुग्रह करो मेरे ऊपर, मैं अज्ञानी हूं, इदे इक्षी, अरे मेरे आंखों के सामने दर्श्य, आके दर्शन दे दो, अब मेरे आंखों के सामने दर्शन, ये बाल गोपाल रूप में आंखों से देखो, ये मेरे मन की भावना है, मेरे ऊपर ये कृपा करो, मैं दुखी हूं, मैं संसार में आपकी कृपा का आकांक्षी हूं। भगवान ने कहा अभी तो बोला था आंखें बंद करके देखूं, अभी बोलता सामने देखा, ऐसे किसी को सामने थोड़ी देखने में आते हैं। तो कहते हाँ नहीं आप देखने में आते हैं, आप ऐसे प्रेम भक्ति दूसरों को दिए, मुझे मालूम, बोला किसको दी, कुबेरात्मजो बदमूर्ति यदवत, अरे कुबेर के दो बेटे बड़े बदमाश थे, धन का तो धन का मालिक था ना बेटे, धन के बड़े धनी के बेटे तो बदमाश होते, ये धन मद अंध में थे, धन का नशा सबसे बड़ा नशा है, और वो लड़कियों को लेके नाच रहे थे नंगे, और नारद मुनि ने उनको देखा था ना, तो लड़कियां तो कपड़े ढक के दूर खड़ी हुई, लेकिन ये बदमाश ऐसे खड़े थे, नारद ने उसके ऊपर कृपा करके कहा मूर्ख कपड़े नहीं पहनते हो, पेड़ बन जाओ, बड़े डर गए, अरे महाराज ये क्या कह दिया, बोला कह क्या दिया, बस तू जाओ, बोला कृपा करो, बोला कृपा अब यही होगी कि अगले कल्प में तुम पेड़ तो दोनों बनोगे, लेकिन नंद बाबा के भवन में बनोगे, भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखते हुए वो आपका उद्धार करेंगे। तो आपने उन कुबेर के दो बेटों को जो जड़ जैसे पेड़ बन गए थे, उनको भी भक्ति भाजो कृतोच, उसको आपने अपनी भक्ति दे दी ना, तो सबने देखा था, आपने कहा आपको हमारी भक्ति प्राप्त होगी, स्व वही वही भक्त स्वप्रेम भक्तिम स्वकम प्रच्छम, मैं वैसी ही भक्ति आपसे चाहता हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्ष ग्रहो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, दामोदर कृपा करके यहां वृंदावन में मेरे ऊपर ये कृपा करो कि मुझे ये भक्ति आपकी मिले। भगवान ने कहा मैंने कहा उसका उधार किया था, मैं तो आगे था, रस्सी थी ना पीछे बांधी हुई, रस्सी ने उसको खोला, रस्सी बांधी हुई थी ना उखल में, वो उखल मां तो उखल में बांध के चली गई, भगवान ने क्या किया, बोला अभी क्या करना चाहिए, अरे नारद ने, नारद मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसने इसको वरदान दिया है कि मैं उनका छोड़ूंगा, तो ऐसे सामने देखा दो पेड़ दिखे, अरे ये अर्जुन के वृक्ष है, भगवान को मुस्कराया भगवान, बोला अर्जुन तो मेरा एक सखा है, अभी मेरे साथ खेलता है, दूसरा अर्जुन तो कुरुक्षेत्र में मिलेगा, अब ये सखी तो मेरे दो मित्र है, ये तो मेरे मित्र के नाम के पेड़ है, इनको तो आज भला करना ही चाहिए ना, हाँ इसका उद्धार करते हैं। चलो भगवान ने उखल को लात मारी, पीछे से उखल टेढ़ा हो गया, उखल टेढ़ा हुआ, भगवान आगे, उखल पीछे गाड़ी की तरह चल रहे, अभी तक बच्चे खेलते हैं देखे, ऐसे उखल जैसे बनते थे पुराने, बच्चों के कमर में रस्सी बांधते थे, वो पीछे वो चलता था, पीछे वो गाड़ी चलती थी, ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसे खेलते थे अभी भी, ये वो भगवान की उस लीला का दृश्य को देखते, दोनों पेड़ों के बीच से भगवान तो गुजर गए, उखल पीछे अटक गया, भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया, दोनों पेड़ गिरे, दोनों पेड़ के अंदर से दो देवता निकले, देवता ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान की परिक्रमा की, भगवान ने कहा आपको हमारी भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त हो, बोला आपने उनको तो प्रेम भक्ति दी थी ना, मैंने कहा मैं आगे था ना, पीछे रस्सी बंधी हुई थी ना, वो पीछे जो रस्सी बंधी हुई थी उस रस्सी के कारण वो खुले ना, बोला रस्सी के कारण तो रस्सी को नमस्कार करते हैं, चलो कोई बात नहीं, नमस्ते अस्तु दामिने, हे रस्सी आपको नमस्कार है, स्पृत दामने, लेकिन आप कैसी कमाल की रस्सी है, उदार अस्त भगवान के पीठ के ऊपर आप बंधी हुई है, कैसा पेट है विश्व धाम ने, कैसा पेट है भगवान का, बोला इस ब्रह्मांड मान है, इसमें दो बार इस पेट के अंदर पूरी दुनिया देखी है, और जब प्रलय होती है तो सारे जीव इसके भगवान के पेट में घुस जाते हैं, जिसमें दुनिया समाई हुई है उस पेट के ऊपर छोटी रस्सी बंधी हुई है, अब नमस्कार रस्सी को करूं कि पेट को करूं, दोनों को नमस्कार करता हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं ये सब ठीक है, उसका उद्धार इसलिए किया था कि नारद मेरा भक्त है, उस भक्त ने उनके लिए कहा था, उनकी सिफारिश की थी, इसलिए उद्धार किया है। तुम्हें भक्ति चाहिए तो मेरे भक्त के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, भक्ति भक्त के द्वारा मिलेगी? बोला हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। बोला फिर ठीक है, मैं आपका ऐसा भक्त जमानत में देता हूँ, फिर आपको भक्ति देनी ही पड़ेगी। बोला बोलो क्या कहोगे? तब ये अंतिम लाइन कहता नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, तो मैं नमस्कार करता हूँ राधिका को। आप तो राधिका की बात तो कभी टालते नहीं हो, वो तो आपको बहुत प्रिय है, अगर वो कहेगी तो फिर तो हमको भक्ति दोगे ना। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम अरे, उनके साथ अनंत लीलाएं आपने की है, अब उसकी कृपा, उसके उसके सदके हमारे ऊपर कृपा करो कि हमको भी अपनी प्रेम भक्ति दे दो। ये इन शब्दों के साथ ये 8 श्लोक पूरे होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र में हरे शब्द जो है ये राधा रानी को संबोधन है, गुप्त रूप में राधा रानी हरे शब्द से संबोधित है। राधा जगत माता है, बच्चे को कोई काम होता है बाप से डरता है, माँ की गोद में जाके उसको प्रार्थना करता है, उसको जाके कहता है प्रेम से, तो वो पिता से उसकी जरूरत पूरी कर देती है। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे को, नहीं करते? तो माँ को हरे शब्द का मतलब राधिका को प्रार्थना करनी कि कृष्ण के पास जो आनंद, राम का अर्थ है आनंद, जो आनंद का खजाना है उसकी सेवा, हमको उसके निकट ले जाओ, उसकी सेवा में लगाओ। तो ये त्वदीया राधिका या त्वदीया है, वो तो आपकी है, बहुत प्रेम आप उनसे करते हो, उनकी कृपा, उनके कारण हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो ये 8 श्लोकों के द्वारा 3 दिन भी अभी आप रहे हुए दीप भगवान को रोज अर्पण करोगे तो कार्तिक मास का फल आपको मिलेगा। 3 के 4 दिन आज से लेकर, वैसे कल से करते तो 5 दिन हो जाता, ये भीषम पंचक के 5 दिन से पूरे महीने का लाभ होगा। तो हम इस शब्दों के साथ आज की इस कथा को समाप्त करते हैं। भगवान की एक लीला एक छोटी आज बताइए, ऐसी कई लीलाएं भगवान की भागवत के अंदर वर्णित हैं अथवा दूसरे शास्त्रों में हैं, जिनका श्रवण करने से हमारा भगवान की ओर मन आकर्षित होगा तो फिर भगवान की स्मृति बनी रहेगी। तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी तो जब जाएंगे तो दुनिया भूल जाएंगे, भगवान याद आएगा, तो फिर वापस भगवान के पास जाएंगे तो बाकी संसार के झंझट से छूट जाएंगे। इसलिए ये भगवान की लीला सुननी चाहिए, कथा कीर्तन करना चाहिए, अपना जन्म सफल करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद करते हैं फिर राकेश जी और विभार और परिवार का जिन्होंने कार्तिक के आज द्वादशी को सत्संग का आयोजन किया, आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो ये हम आपको एक इस साल का कैलेंडर है और इसके अंदर दामोदर जी हैं, ये आप घर ले जाके इसका 3-4 दिन तक दीप रोज कीजिएगा इनको अर्पण, और बहुत कार्तिक का काल
परम देव मोक्षं मोक्षं बलिवा इदं देव पूर्णनाथ गोपाल बालं सदा मनसां नमो देव दामोदर अंतरिषो प्रसीद प्रभो दुख जालाधिमन कृपा दृष्टि वृष्टि मदानो कुबेरा नमो शरणे दामोदरे नमस्ते सुदामने सुपरिति दामने प्रियदाय च विश्वसरामे नमो राधिकाय कविया प्रियाय नमो अनन्तनीयाय देवाय कृष्णम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Prabhupada.